نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پہلے پارے کا رکوع نمبر 15 ہے, آیت نمبر 113 سے 121, سورة البقرہ, اور سورة بقرہ کا رکوع نمبر 14 ہے. تفسیر دیکھتے ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود تو کسی چیز پر نہیں. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, انہی سے ملتی جلتی بات. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون, پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جس میں وہ جھگڑ رہے تھے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے اور مضمون وہی ہے جو پچھلے رکوع کے بالکل آخر میں تھا کہ وَقَالُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى, اسی کو دوسرے رنگ میں یہاں پیش کیا گیا. اور ہم دیکھ چکے کہ وفد نجران سے عیسائی یا کرسچینز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس موقع پر یہود بھی وہاں آ گئے اور دونوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو حق پر کہنے لگے. انہی کو دیکھتے دیکھتے کچھ مشرکین یعنی مکہ یا مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو بھی سوجھی اور انہوں نے بھی یہی دعویٰ کر دیا, اور اس طرح ہر ایک نے اپنی بڑائی کا خود ساختہ معیار بنایا اور اسی پہ جم گئے. یہود کو یہ فخر تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ہماری نسل میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے. نصارہ کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا دا اونلی چائلڈ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف بھیجا, اس لیے ہم بہت زیادہ حق پہ ہیں. مشرقین کی خواہش کیا تھی یا ان کا زوم کیا تھا کہ چونکہ ہم خانہ کعبہ کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں, کعبہ کے پجاری ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, لہٰذا ہم ہی سب سے زیادہ اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے تینوں کی باتیں انہی کے لفظوں میں لوٹا دیں کہ وقالت الیہود لیست النصاریٰ علی شیئن, یہود نے کہا. اللہ تعالیٰ نہیں یہ کہتا, یہود کا یہ قول جو ایک مذہبی گروہ تھا دوسرے مذہبی گروہ کے بارے میں یا ان کے تقابل میں اپنے آپ کو جو کہتے تھے وہ ویسے ہی پیش کر دیا کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر. یعنی یہود نے کہا کہ نصارہ حق پر نہیں. یہاں علی شیئن سے مراد کیا ہے؟ حق پر نہیں ہے, ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, ان کی کوئی جڑ نہیں ہے, یہ کیسے جنت میں جائیں گے, ان کا دین تو غلط ہے. اور یہود کیا کہتے تھے کہ نصارہ نے کرسچینٹی میں اصل بائبل یعنی تورات جو ہم پہ نازل ہوئی اس میں تبدیلیاں کر لیں. ہم پیچھے سے یہ چیز کئی بار دیکھ چکے کہ شروع میں جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی, پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے اس تورات میں بہت سارے اضافے کر دیے اجتہادات کی بنیاد پہ, کچھ ان کے مفسرین کی باتیں, کچھ خیانتیں تھیں ان کے دیندار طبقے کی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو چینج کروایا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں بے جا قسم کی سختیاں جب ہو گئیں یا لوگوں نے کر لیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو الگ کیا. چوتھے پارے کے آغاز میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات پڑھیں گے. اب جب یہ بات ہوئی تو یہود نے یہ الزام لگا دیا کہ دیکھو یہ کیسے دین والے ہیں کہ ہمارے دین کی باتوں کو غلط کہتے ہیں. آپ ذرا سنیریو سمجھنے کے لیے آج کے دور کی بات کر لیں کہ آج کے دور میں بھی لوگوں نے اجتہادات کے نام پہ, फिकही बहसों में उलझाकर फिरका वारियत की वजह से दीन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाईं। मसलन एक चीज़ जो बहुत मुसलमान शुरू से सुनते आए और वो हो सकता है कि अब इतनी दफ़ा सुन ली कि लोग उसको दीन समझें। मसलन आज भी कुछ लोगों का ख्याल है कि वुज़ू करने के लिए कुछ ख़ास शराइत चाहिए, उसके लिए मिट्टी का लोटा हो, बैठ के वज़ू किया जाए और आम टॉयलेट में नहीं कर सकते। अब ये बातें जब लोगों से पूछी जाएं, इसी तरह बास लोग कहते हैं कि वज़ू के दौरान औरतों के सर पे दुपट्टा लाजमी है। आपने ये भी सुना होगा कि टॉयलेट में जाते वक्त सर पे दुपट्टा ज़रूर रखो। मुझसे भी लोग सवाल करते हैं कभी कभी कि क्या टॉयलेट में जाते हुए दुपट्टा सर पे लेना लाजमी है, तो मैं उनको कहती हूँ घर से बाहर जाते हुए लाजमी है, टॉयलेट के बाहर तो मैंने नहीं सुना। क्या है, वहाँ बलाएँ होती हैं और वो हम पे आएंगी, तो वहाँ भी बलाएँ हैं तो बाहर भी हैं। हम अपनी मर्ज़ी से दीन की किसी बात को जायज़ या नाजायज़ नहीं कह सकते। बाज़ बातें लोगों ने इख्तियातन, एहतियात का तकाजा, चले एहतियात एहतियात करके उसको बढ़ा दिया। अल्लाह का दीन जब असल शक्ल से या तो मुश्किल कर दिया जाए या आसान कर दिया जाए। देखिए मुश्किल कौन करते हैं, तकवा के नाम पे, इज्तिहादात के नाम पे, अजीमत के नाम पे, और आसान करते हैं लोग ख्वाहिशात की पैरवी के नाम पे। ये दोनों इंतहाएं हैं। असल दीन एक सीधी ज़मीन है, इस पे चलना आसान होता है। आप सीधे मैदान में चलें आपको बिल्कुल आसानी लगेगी। दीन को तकवा के नाम पे, ठीक है अच्छी बात है, अल्लाह ने एक चीज़ पसंदीदा रखी उसको कोई करेगा उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन आम इंसान के लिए आप वो चीज़ रख दें जो एक बहुत आला तकवे वाले शख्स की ज़रूरत हो सकती है या वो कर सकता है, तो वैसी है जैसे सीधी ज़मीन की बजाय पहाड़ी पे चढ़ना। और आपको पता है कि ऊंचा जाना, पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है लोगों के लिए। अब होता क्या है कि लोग मुश्किल फील करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह आप देखिए कि ज़मीन के नीचे अगर घड़े खोदे जाएं और हम में से किसी को कहा जाए कि उसमें जाएं, तो लुढ़कने का डर होता है ना। ये दोनों इंतहाएं हैं ना। ख्वाहिशों की बुनियाद पे दीन को इतना नरम कर लो कि दीन मोम की नाक बन जाए, जिधर जो मसला निकालना हो उसको उधर से दलाइल लेके निकाल लो, और ना इतना मुश्किल कर दो कि अजीमत का रास्ता जो है वो फ़राइज़ का रास्ता दिखने लगे। यहूद ने ये किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने वो बेजा किस्म की पाबंदियाँ निकाली। ये ऐसे ही है, इसको और आसान करने की कोशिश करती हूँ कि किसी भी मुल्क का लॉ है, कानून है कि आप ट्रैफिक में जहाँ रेड लाइट आएगी वहाँ खड़े होंगे और जहाँ ग्रीन लाइट आएगी वहाँ पे आप चलना शुरू कर देंगे। जब येलो लाइट होगी तो संभल जाइए कि इशारा बदलने लगा। ये है बैलेंस, सहूलत, आप इसको मानते जाइए, लोग मान जाएंगे। अब इसके बाद आपका दिल चाहे तो सड़क के किसी ऐसे कोने पे गाड़ी खड़ी कर लें जहाँ आपको कोई हाजत है, ज़रूरत है, कोई काम है, लेना है, अगर वहाँ पार्किंग है तो आप खड़ी कर सकते हैं। ये आपकी ज़रूरत थी, आपने कर ली खड़ी, आपको हुकूमत नहीं कहेगी कि आपने क्यों खड़ी की। लेकिन अगर आप इस बात को कानून बना के पेश करें और किसी नए आने वाले को यहाँ के लॉ सिखाएं, तो आप कहें कि देखें ये रेड ग्रीन और ब्लू के अलावा यहाँ भी गाड़ी खड़ी करना लाजमी है और ये कानून का हिस्सा है, और अगर कोई बंदा इसको सुन के मान जाए और कल इस बात को आगे पेश करे और हुकूमत तक बात चले कि ये क्या हुआ भाई, हमने तो ये फ़र्ज़ नहीं किया, आप क्यों फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो जुर्म होगा ना। किसी के कानून के अंदर हलल डालना ये जुर्म है। आप किसी इदारे में आते हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको फॉलो करने हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कोई बात अज्यूम करें और आपके नहीं मेरी नीयत बड़ी अच्छी थी इससे फ़ायदा होगा और उन लोगों को पता भी ना उस बात का और अपने तौर पे आप फैला दें, तो शर होगा। यही चीज़ अल्लाह के लाए हुए दीन में नापसंदीदा है। आज बहुत सारे लोगों को जो दीन से रिएक्शन हुआ उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि या तो हमने दीन को इतना खुश्क, इतना ड्राई और इतना पेचीदा बना के पेश किया कि आम बंदा आता ही नहीं है, वो कहता है नहीं इस टू मच, मैं नहीं करता, चूँकि मैंने करके भी गुनाहगारी होना है तो फिर मैं दुनिया में अपनी ख्वाहिशें तो पूरी कर लूँ, चलो यहाँ की दुनिया तो अच्छी हो जाए, अगर जाना ही आग में तो यहाँ मौज मस्ती कर लूँ। दूसरी तरफ क्या हुआ कि लोगों ने इतना नरम दीन पेश कर दिया, इतनी ख्वाहिश वाला दीन के दीन दीन ही ना रहा, वो घर घर की बात हो गई। अल्लाह ताला हमेशा बैलेंस पे रखता है। अब क्या हुआ कि जब नसारा के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन रिवाइज हुआ, रिवाइवल ऑफ रिलीजन, तजदीद, जिद्दत यानी एक चीज़ को नया करना। अब क्या हुआ कि यहूद ने इल्ज़ाम लगा दिया कि देखो तौबा तौबा, ये कैसे दीनदार है, हम जो दीन की बातें कहते हैं ये उसको जायज़ करार देते हैं, हमारी गलत, हम जिसको गलत कहते हैं ये ठीक कहते हैं। ये ऐसे ही जैसे आज के दौर में आप कुरान पढ़ने लग गए हैं ना, इंशाल्लाह कुछ अर्सा देखिएगा आप, चंद पारे आप पढ़ लेना, आपको समझ आएगा अल्लाह अकबर ये दीन है, इतना आसान, और मैं तो इसको इतना मुश्किल समझती थी। आज भी आप देखिए कि हमारे दीन में भी बहुत सारी पाबंदियां खुद साख्ता लोगों ने लगाई हुई हैं। मसलन किताबो तहारा में हम पढ़ते हैं कि एक इंसान अगर जनाबत की हालत में है और उसको कोई मजबूरी है, या अगर वो अगली नमाज तक गुसल नहीं करता तो इस ओके। मिसाल दूंगी आपको ताकि आप समझ सके, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आजकल। दूसरी तरफ एक शरीयत हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है कि इस हालत में जितने कदम उठाओ उतने फरिश्ते लानते करते हैं। मुझे एक औरत के लफ्ज़ याद है कि अगर मुझे कभी इस हालत में मजबूरन रहना पड़े तो मैं फिर एक जगह से जाने के लिए बड़े बड़े कदम लेती हूँ ताकि कम कदम मेरे हों। ये कौन सी शरीयत है? ये लाइल्मी की शरीयत है, जहालत की शरीयत है। सर पे वजू ज़रूर लो, आज भी लोग गुसल करते हुए कई कई कलमे पढ़ रहे होते हैं। एक लड़की की शादी थी तो उसका रंग उड़ा हुआ था, इतनी परेशान थी। मैंने बात की, मैंने कहा क्या बात है, कहती असल में मुझे कलमे नहीं आते, 6 कलमे। तो मैंने कहा शादी से इसका क्या ताल्लुक है, कहती नहीं हमारे यहाँ निकाह के वक्त पहले 6 कलमे पढ़वाते हैं फिर निकाह कराते हैं। ये है वो शरीयत जिसको तब्दील करता है ये कुरान, और जिस बंदे ने ये सीधा दीन दिया लोगों को, लोगों ने उस पर ज़रूर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुल्हिद है, ये दीन में इल्हाद डाल रहा है, कजरवियाँ कर रहा है। हमने तो एक दुकानदारी बनाई हुई थी, हमने तो एक बड़ा बहुत प्रोटोकॉल वाला दीन रखा हुआ था, ये क्या कर रहे हैं, ये आम बातें लोगों तक ला रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि आज भी लोग जो ही सच्चा कुरान सामने आता है उसकी मुखालफत पे आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे इजाफे और हमारी पाबंदियाँ, और वो बाज़ दफ़ा बदनीयती से नहीं होती, इज्तहाद और सख्ती सख्ती करते करते हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि वो कुरान पढ़ने वालों को बेदीन कह रहे होते हैं। वो ये नहीं खुश होते आप कुरान पढ़ और पढ़ा रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि आप लोगों को खुद सर कर रहे हैं, आप औरतों को जरूरत दे रहे हैं, औरतों को उनके हकूक पता चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा आप जब कुरान पाक में आती हैं हक हक महर और निकाह की चीज़ें, तो कई खवातीन कहती हैं आज हमें पहली दफ़ा पता चला कि हमारा भी हक महर होना था और फ़र्ज़ था, हमने तो आज तक ना मांगा ना पूछा। अब जब वो घर जाके बात करती हैं तो फिर लगता है कि औरतों को अवेयरनेस हो रही है, इनको अपने हकूक का पता चल रहा है। तो अब हुआ क्या कि जब ये दोनों तीनों गिरोह मिले, यहूद ने कहा कि नसारा तुम किसी भी चीज़ पे नहीं हो। क्यों कहा? इनका ये कहना उन तब्दीलियों की बुनियाद पे था जो हज़रत ईसा के ज़रिए से तौरात में हो चुकी थी, ठीक है। और देखा जाए तो यहूद का ये इल्ज़ाम गलत था, लेकिन वकालत इन नसारा लैसत अल यहूद अला शयन, नसारा ने ये कहा कि यहूद किसी दीन पे नहीं है। ये इनका कौल उनकी निस्बत दुरुस्त था, क्यों? कि यहूद पुराने दीन पे लोगों को बुलाना चाह रहे थे, हज़रत ईसा के ज़रिए जो प्योर फॉर्म में क्रिश्चियनिटी सामने आ गई, नसारा उसके दावेदार थे, और जब तक इस्लाम नहीं आया था उस वक़्त तक नसारा का दीन वैलिड था, उसमें जो सच दीन की बातें थी वो दुरुस्त थी। तो यहाँ देखा जाए तो दावा दोनों ने किया है, लेकिन नसारा का दावा दुरुस्त था यहूद के दावे की निस्बत, और यहाँ इसको मनाजरेबाजी की जगह दे दी, इसको बुरे रंग में कहा। तो अल्लाह ताला ने कहा वहुम यतलून अल किताब, देखो किताब पढ़ने वालों के अखलाक, इनके रवैये देखो, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक ही किताब को मानते हैं और उसके ऊपर भी झगड़ते हैं, उसी में लड़ते हैं, उसी के अंदर इनका ये मामला है, फिर इसी से इनके गिरोह हुए। आज भी देखिए कि जो बाइबल है वो दो हिस्सों में है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, और इसका भी हर साल न्यू वर्जन आता है। आप कोई मसला कोट करें तो साथ आपको ईयर लिखना पड़ता है कि किस साल की तौरात में या बाइबल में ये बात मौजूद है। फिर प्रोटेस्टेंट फिरका था पोप के हाथ में, यानी ये पूरी हिस्ट्री है, किसी वक्त मौका मिला तो आपको सुनाऊंगी कि ये आज की क्रिश्चियनिटी उस असल क्रिश्चियनिटी से कैसे बदल गई। अल्लाह ताला ने यहाँ बात खोल के बता दी कि बात ये है कि कोई बंदा जब दूसरे दीनदार के ऊपर इस तरह की बातें करे कि वो सारे तकाजे जो अदब के थे, अखलाक के थे, जो मुसलमान को मुसलमान के साथ जोड़ने वाले थे, उनको बलाए ताक रखते हुए अपनी नस्बतें शख्सियात से जोड़ें, जगहों से जोड़ें, और फिर उसी फ़िरकावारियत को हवा देने लगे, और वो लोग जो हिदायत के खुद साख्ता मेयार बनाकर सिर्फ खुद को ही हक पर समझने लगें, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। आज भी यही कुछ हो रहा है। आप देखिए कि आज के दौर में मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं वो कुरान पाक से बहुत मुख्तलिफ दिखता है। असल कुरान ना पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये दीन है, तो वो क्या है जो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है? इसकी दो वजूहत होती हैं, एक लाइल्मी, कुछ लोग कुरान पाक पे जो अमल नहीं कर पा रहे उसकी वजह उनका इल्म वाला ना होना है, दूर है, मिली नहीं, सोचा नहीं, वजह नहीं थी, कुछ एहसास नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की वजह जो है वो आबा परस्ती है, अपने माँ बाप की बातों को पूछना, खानदान और नस्लों के नाम पे जो करते आ रहे थे उसी को मानते जाना, मानते जाना। पीछे आयत 111 में भी पढ़ चुके कि तिल का मानी यूहम, ये इनकी आरजुएं हैं, ये कहते रहे जो कह रहे हैं इनकी मर्जी, लेकिन असल बात ये है कि दीनदारों का ये मिजाज नहीं होना चाहिए। कहा कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन ला यालमून मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह उन लोगों ने भी कहा था जो इल्म नहीं रखते। ये कौन है? ये मक्का के मुशरिकीन है। कुरान पाक में अमूमन जहाँ भी ला यालमून या उम्मीयीन कहा गया तो इससे मुराद मक्का के रहने वाले बुत परस्त लोग हैं, क्योंकि यहूद और नसारा तो उस वक्त के मजहबी लोग थे ही, लेकिन मक्का वाले जो नस्बत तो जोड़ते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन अकायद इतने बिगड़ चुके थे कि बिल्कुल लाइल्म हो गए। उन्होंने भी यही कहा, और उन्होंने क्या कहा, ये जो दो बातें ऊपर अल्लाह ने कह दी, वो कहते थे हम हक पे हैं। आज भी आपको ये नारा मिलेगा, हम हक पे हैं, हक प्रस्त, हक को मानने वाले, निजात पाने वाला गिरोह। हर बंदा कहता है जो स्लोगन मेरे पास है बस यही जन्नत का सर्टिफिकेट है। क्या होगा? फल्लाहु याहकुमु बैनहुम, अल्लाह इनके दरमियान फैसले करेगा। यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन, फ़ी मा कानू फ़ी ही यख्तलिफ़ून, उस बात में जिसमें वो झगड़ रहे थे। क्या मतलब? इससे ये मतलब है कि दुनिया में नहीं पता कि हक पे कौन है और बातिल कौन है। बाज़ लोग आज सबको मिला के खिचड़ी जो पकाना चाहते हैं वो ये आयतें पेश करते हैं, कहते हैं देखो दुनिया में नहीं पता चलेगा कौन हक पे और कौन बातिल है, इसलिए जो समझ आता है करते जाओ और कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा। ये बहुत मिस इंटरप्रिटेशन होगी। इसका तो ये मतलब है कि हक है ही कोई नहीं दुनिया में, बातिल ही बातिल है, या सभी उन्हीं में से पता चलेगा। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से पहले क्या कहा कि लोगों तुम्हें मैं उस दीन पे छोड़ के जा रहा हूँ कि लैलुहा कनहारिहा, जिसकी रातें उसके दिनों की तरह रोशन है। सहाबा इकराम कहा करते थे हमारे सामने कोई परिंदा भी उड़ जाए तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें उसके बारे में भी बताया। तो अल्लाह के नबी ने हमें अनडिसाइडेड रिलीजन नहीं दिया कि ये ठीक है कि नहीं ठीक, गलत है कि नहीं गलत, सही है कि नहीं सही, आपने बिल्कुल सच्चा दीन दिया। यहाँ इस जुमले का मतलब ये कि अब ये नहीं मानेंगे, अल्लाह को पता है हक पे कौन है, लेकिन इन्होंने इतनी जिद्दबाजी रख ली है कि अब ये मानेंगे ही नहीं, तो बेहतर है कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो। बहस ना करो, मुबाहसे ना करो, ज़बरदस्ती लोगों को किसी चीज़ का पाबंद ना करो। कल क़यामत के दिन इनको खुद ही पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया और किस तरीके से किया। आप देखिए कि पिछली आयतों को और इसको साथ मिला लें तो सारी बात का खुलासा क्या बनता है कि जन्नत में जाने की दो शरायत हैं, मन असलम वजहहु लिल्लाह और वहुवा मुहसिनुन, बस इखलास और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करना। इसके अलावा अब जो कोई कुछ भी कर रहा है ना तो फिर उसको खुद ही पता होगा कि मैं दुरुस्त काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। इन आयात में अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारे सामने खोल दी, और वो क्या है कि नस्ली मुसलमान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो या नसरानी हो, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। नस्ल का मतलब ये कि जस्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि हम ख़ानदानी मुसलमान हैं, चूँकि हम नस्लदार इस्लाम पे हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। कोई जन्नत का ठेकेदार नहीं, ये खुद फरेबियाँ हैं, हकीकत से दूरी की बात है। अल्लाह ताला नामों से मुतासिर नहीं होते, किसी को कबूलियत नाम से नहीं मिलती। अगर उसके अंदर ईमान और अमल सवाले ना हो तो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने हर दौर में शरीयत को मुख्तलिफ तरीके से रखा लेकिन दीन की बुनियाद एक ही रही। हर दौर में जिन्होंने अपने दौर की किताब को माना वही अमल सवाले होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अमल सवाले क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके को मानना। ईसा अलैहि सलाम के दौर में अमल सवाले क्या था जो ईसा अलैहि सलाम और इंजील की तालीमात से मैच करता हो, और आज क़यामत तक के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाने के बाद कुरान और हदीस, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके, ये है जन्नत में जाने का एक क्राइटेरियन। देखिए, अगर ये क्राइटेरियन ना हो तो आप सोच सकते हैं कि जितने इस वक्त मसले हैं ना दुनिया में, इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। पता है ना कि एक बंदा सच है, मतलब आप देखिए 6 लोग बैठे झगड़ रहे होते हैं घर में किसी बात पे, बच्चे बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतने में एक बड़ा आता है, वो सब की बात सुन के कहता है अब खामोश हो जाओ, अब जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुनो। उस एक की बात सुन के सारे चुप कर जाते हैं ना, क्योंकि उस एक के पास हक था। अगर यही ना पता हो कि हक है क्या, तो आप सोचिए कि फिर तो सिर्फ धोखा ही धोखा है दुनिया में। कोई काम करें, आपके और मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत क्राइटेरियन आ रहा है, कोई भी काम करने लगें तो 2 मेयार सामने रख लें, क्या अल्लाह के लिए है, नियत अच्छी है, इससे मुराद अच्छी है, और दूसरी क्या है कि जो मुराद लेना चाहती हूँ इससे, जो अच्छे नतायज इससे निकालना चाहती हूँ, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मैच करते हैं। आज लोग इन्हीं तब्दीलियों की वजह से दीन से दूर हो गए, कुछ लोग एक एक ऐसे कोने में चले गए, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ करार दे दी, और वो कहते हैं हरज क्या है, देखो इससे मोहब्बत कितनी आती है, देखो लोग दुनिया से बेजार हो जाते हैं, देखो सच बोलने लगते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। मान लिया आपने रिजल्ट बहुत अच्छे लिए, लेकिन आप तरीक़ेकार में गलती खा गए। बस इसके बाद कोई अपने आप को सुन्नी कहे, कोई वहाबी कहे, कोई हनफी के, वो शाफी के, मालकी के, मुस्लिम कहे, ये सिर्फ नाम है, और नामों से कुछ भी नहीं होता, और मुसलमान दावों से नहीं बनता। हकीकी मुसलमान वो होता है जो हकीकत में अल्लाह ताला के सामने झुक जाए। मुसलमान किसी की सुलभ से पैदा होने की वजह से नहीं आता, बल्कि इस्लाम कब आता है, जब इंसान की ज़िंदगी में टोटल सबमिशन आती है, जब वो अपने आप को अल्लाह ताला के पास लेके आता है। एक छोटा सा सवाल जहन में आ सकता है इस आयत को सुनते हुए, और वो क्या है कि एक तरफ मुसलमान है, नाम तो लेते हैं ना अल्लाह का, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं, तो क्या नाम लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में? छोटी सी मिसाल और थोड़ी सी वाजे करने के लिए समझा देती हूँ कि अगर आज दुनिया के नक्शे पे नज़र दौड़ाएं तो पता क्या चलता है कि मुसलमान ही मुसीबतों और आफात का शिकार दिखते हैं, हर तरफ से ऐसे लगता है कि उन्हीं के ऊपर है। हम क्या सोचने लगते हैं कि इसका सबब हमारा इस्लाम है, हालांकि इसका सबब हमारा तर्क इस्लाम है, इस्लाम को छोड़ने की वजह से हम ऐसे हैं। हमने इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रखा हुआ है, उनके अकायद और वो इस्लाम की बाकी चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। तो क्या हमें ये हक हासिल है कि हम इस्लाम और मुस्लिम्स के साथ किए हुए अल्लाह ताला के जो वादे और इनाम है उसका इंतज़ार करें? नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि एक शख्स अपने आप को मुस्लिम कहता है, फिर वो काम नहीं करता जो उसको करने चाहिए, तो उसकी पकड़ ज़्यादा होगी। दुनिया में आप देखिए कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा डांटते हैं कि दूसरे के, यकीनन अपने बच्चे को, आप अपने दोस्त के साथ ज़्यादा बात संजीदगी से करते हैं या दुश्मन से? जो आपको अपना बन के आपकी बात ना माने, उसी पे तो शिकवा है आपको, उसी का तो शिकवा है। तो अगर मुसलमान को आज बात बात पे सज़ा दी जा रही है, तो ये वही मिसाल है कि जैसे उस्ताद अपने हर शागिर्द को नहीं टोकता, याद रखिए जिनको उस्ताद चमकाना चाहता है, जिनको उसको लगता है कि इसमें बहुत खूबियाँ हैं लेकिन कुछ कमियाँ हैं, उसको हर बात पर टोकेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको मैंने आगे के लिए तैयार करना है, इसके अंदर कोई कमी ना रह जाए। और एक ऐसा शागिर्द है कि जो बेचारा कुछ भी कर कराने के काबिल नहीं, उस्ताद उसकी 10 बातों को इग्नोर करता है, छोड़ो इसको क्या कहना है, जो सीख रहा है वही बहुत है, जो कर रहा है वही बहुत है। अल्लाह ताला मुसलमानों पे जो मुसीबतें लाता है उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को चमकाना चाहता है कि देखो तुम अगर दुनिया में अल्लाह ताला के बन के रहते हो तो तुम्हें अल्लाह की मदद आएगी, और नहीं हो तो फिर तुम दूसरों की तरह ही हो, लिहाजा तुम अपने आप को दूसरी तरफ करो। और दूसरी बात है कि मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करेगा जो काम करेगा वही पाएगा, नॉन मुस्लिम काम करेगा अल्लाह उसको बदला देगा दुनिया में, मुसलमान काम करेगा मुसलमान को भी बदला देगा। आज बच्चे भी पूछते हैं कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हम जलील क्यों हैं, और वो अगर नॉन मुस्लिम हैं तो उनको इतनी नेमतें क्यों मिली, इसलिए कि वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में रहने के जो कानून और जाब्ते बनाए वो बिल्कुल अदल और इंसाफ वाले थे। हम सिर्फ खुशफहमियों के साथ जीना चाहते हैं, नतीजा क्या निकला कि खराबी है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कसीर तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिनको हम जाने के ना जाने, लेकिन वो पूरे बैलेंस तरीके से दुनिया में जी रहे हैं। मत सोचिए कि सारे मुसलमान खराब हैं, चंद गिनती के नाम सारों को बदनाम करते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदे का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो उसको तो खुद ही पता चल जाता है कि मुझे अब दुनिया में कैसे जीना है और आखिरत में कैसे जीना है। अब इन दो तीन आयात में फ़िरका वारियत की खूब बात हुई, तू तकार हो रही है, तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला इसके असरात बताते हैं कि जब दीन वाले लोग, जब एक ख़ास सोच के लोग कौमों में और गिरोहों में बढ़ जाते हैं तो उसका असर क्या होता है, और वो क्या है कि इबादत गाहें वीरान हो जाती हैं। इसीलिए अगली आयत को देखेंगे, वमन असलमु मिम्मन मसाजिद अल्लाही अन युस्कर फी हस्मुहु वसआ फी खराबिहा। और इससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह की मस्जिदों से मना किया कि उनमें उसका नाम लिया जाए और उसकी खराबी की कोशिश की। उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ये वही लोग हैं कि जो इसमें दाखिल नहीं होने वाले मगर डरते हुए। लहुम फि दुनिया खिज्य व लहुम फिल आखिरति अज़ाब नज़ीम, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखरत में भी उनके लिए ज़बरदस्त अजाब है। एक तो इस आयत में इशारा है मुशरिकीने मक्का की तरफ, उन्होंने सन 6 हिजरी में मुसलमानों को सहाबे कराम जो नबी सल्लम के साथ थे उमरे की नीयत से मक्का आना चाहते थे। कोई नीयत जंग की नहीं थी, कोई असबाब नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हुदैबिया के मुकाम पे रोक लिया और वन साइडेड किस्म की शराइत देकर वापस भेज दिया कि तुम यहाँ अब नहीं जाओ, अगले साल आना और उम्रा अदा करना। ये बात मुसलमानों पे बहुत भारी गुजरी। अल्लाह ताला ने इसका तذکرہ किया कि गम ना करो, व मन असलमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाही, इससे बड़ा कौन जालिम होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके। और यहाँ मसाजिद से मुराद इबादत गाहें हैं, जहाँ अल्लाह की इबादत की जाए, ये कोई भी जगह हो सकती है। एक तो इसमें इशारा है मक्का वालों की तरफ, दूसरा अब यहाँ से लेके आगे तक अल्लाह ताला जहन साजी कर रहे हैं दूसरे पारे की इब्तदाई आयात की, कि जिसमें किबले की तब्दीली का हुक्म दिया गया था। उसकी तफसीलात तो सारी वहीं आएंगी, लेकिन यहूद जो मदीना में रहते थे उन्होंने तरह तरह के एतराज़ किए, ये कैसा दीन है, कभी एक तरफ मुँह करते हैं कभी दूसरी तरफ करते हैं। नतीजा क्या हुआ कि वो लोग जो दीन में अभी नए नए आ रहे होते हैं उनके दिलों में शुभात पैदा हुए, शुभे निकले तो ज़ाहरी बात है कि दिल से अल्लाह की मोहब्बत कम हुई, नबी के ऊपर एतमाद जो था वो कम हुआ, और उसका नतीजा क्या हुआ कि नमाजें छुट गईं, तरके नमाज हुई तो मस्जिदें वीरान हो गईं। और यहूद जो थे वो मस्जिद नबी को वीरान करने की कोशिशें करते थे उस दौर में। इसी तरह जो रोमन्स थे ना, रोम जो उस दौर के अंदर आप समझ सकते हैं, उनके बाज़ बादशाह जो क्रिश्चियंस थे और वो नसारा के नफाल का इनकार भी नहीं करते थे गो के वो नसरानी ना हो, और किसी ज़माने में यहूद शाम पर चढ़ा है, यानी यहूद और नसारा की मजहबी चपकलश होती रहती थी। बाज़ दफ़ा बैतुलमक़दस के अंदर तबाहियाँ भी हुईं, जब यहूद को मौका मिलता तो वो नसारा के लिए मुश्किल खड़ी करते और इसी तरह दूसरी तरफ होता, बल्कि होते होते यहाँ तक भी बात हुई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ में जब चाबियाँ दी गई थी बैतुलमक़दस की, तो उस वक़्त एक ही शर्त दी थी उस वक़्त के नसरानी बादशाह ने कि यहाँ किसी यहूदी को कदम नहीं रखने दोगे। यानी इनकी आपस की जो बातें थी उसका नतीजा हुआ कि तारीख में कई बार ऐसा हुआ कि बैतुल मक़दस वीरान हुआ। या मसाजिद अल्लाह से मुराद बैतुल्ला भी होगा अगर इससे मुराद मक्का वाले लिए जाएं, और इस मसाजिद अल्लाह से मुराद मस्जिद नबवी होगी अगर यहूद की वो साजिशें सामने रखी जाएं जो वो मदीना में करते रहते थे, और इससे मुराद बैतुल मक़दस होगा अगर यहूद और नसारा की आपस की जंगें ली जाएं। लेकिन देखा जाए ना तो ये सब कुछ होता क्यों है कि जब हर बंदा अपने गिरोह और अपने फ़िरके की बात करने लगता है तो नतीजा क्या होता है कि मस्जिदें वीरान होने लगती हैं। अगर इस आयत को हम साथ जोड़ के आज के हालात को देख लें तो आज मस्जिदों का क्या हाल है। युज़कर फ़ी हस्मुहू को अगर देखें, अल्लाह का नाम लेने से मना करता है। अल्लाह का नाम कब लिया जाता है? जब अल्लाह के दिए हुए दीन को वहाँ से प्रमोट किया जाए। अल्लाह ताला के दीन की बजाय अगर वहाँ दूसरों की बातें, उनकी कहावतें, उनकी रिवायतें पेश की जाएं, तो गोया कि ये अल्लाह के नाम की बजाय किसी और के नाम को बुलंद करना होगा। और साफ ही खराबी है, उसकी खराबी की कोशिश करता है। खराबी दो तरह से होती है, एक है हिस्सी, फिजिकल डिमोलिश करना, फिजिकली मस्जिदों को गिरा देना, और एक होती है मानवी। मानवी क्या होता है कि लोग तो आए मस्जिदों में लेकिन वो मकसद पूरा ना हो जिसके लिए मस्जिदें बनती हैं। पहली किस्म क्या है, मस्जिद को गिरा दिया, उसके अंदर आने से रोक दिया, हालात ऐसे पेश कर दिए कि जिसकी वजह से मस्जिद में आना मुमकिन ना हो। और हमेशा लोग गन पॉइंट पे नहीं मना करते मस्जिदों और इबादत खानों में जाने से, बल्कि दुनिया में फन को इतना फैला दो, शैतानी तरीक़ेकार इतने आम कर दो कि लोगों को मस्जिदों में जाने का होश ही ना रहे। मसरूफियत इतनी कर दो, इतना उनकी ज़िंदगी में अट्रैक्शन पैदा कर दो कि जिसके नतीजे में लोग मस्जिद ना आना चाहें। और दूसरी देखें तो मस्जिदें तो बहुत हैं लेकिन वहाँ से अल्लाह का नाम नहीं मिलता, वहाँ जाके भी लोगों की अल्लाह से मुलाकात नहीं होती। आप देखें कि कोई किसी के घर में जाए और वहाँ उसको मौजूद ना पाए, वहाँ दिल नहीं लगता। घर जितना मर्जी भरा पड़ा हो सामान से, खाने पीने की कसरत हो, घर वाला घर ना हो तो आपका दिल नहीं लगता वहाँ। इसी तरह वो मस्जिदें जहाँ बड़े बड़े गुंबद हों, जहाँ खूबसूरत कारपेट हों, लेकिन वहाँ अल्लाह का नाम लेने की बजाय कुछ और ही काम हो रहे हो, तो याद रखिए कि फिर वहाँ भी दिल नहीं लगता। और साथ दूसरी वजह क्या है कि जब मस्जिदों में फ़िरका वारियत इतनी आम हो जाए कि मिंबर पे खड़ा हुआ शख्स सिर्फ़ अपने फ़िरके और अपने मसलक को प्रमोट करने पे ज़ोर लगा दे और ज़्यादा वक्त उसका दूसरों पे तनकीद करने में गुजर जाएगा, तो जो लोग आके बेचारे बैठे हैं, जो गुनाहगार वहाँ आए हैं, वो तो तौबा करने आए थे, वो तो नदामत भरा दिल लेके आए थे, उनको क्या लगे आपकी जमातों और आपके गिरोहों से। हुआ क्या कि जब से फ़िरका वारियत आम हुई, मस्जिदें खाली होने लगी, लोगों ने एक अपने लिए उजर ले लिया, क्या फ़ायदा वहाँ जाके, वहाँ तो लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करनी है। और नतीजा क्या निकाला कि हम तो आखिर में जाएंगे जब खुतबा ख़त्म हो जाएगा और जुमे की नमाज़ शुरू होगी। लोगों ने एक फ़रार ढूंढा, हम कहते हैं आज मस्जिदें खाली हैं, हम कहते हैं, वैसे जिनकी मस्जिदें वो नहीं कहते ये खाली हैं, वो कहते हैं बहुत काम है हमारे पास। लेकिन आप पूरे ग्लोब पर नज़र डाल के देखें, आपको मस्जिदों की हालत दिखेगी। एक रिपोर्ट थी मेरे पास भी, मैंने उसमें से एक जगह कोट भी करवाया था कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की कुछ मस्जिदों का जायज़ा लिया गया, और उसमें से जो पता चला और वो यही था कि सिर्फ 5% मस्जिदें जुमे की नमाज़ पे भरती हैं, 95% वो खाली होती हैं। फजर की नमाजियों की तादाद आटे में नमक के बराबर, जोहर और असर तो बाज़ मस्जिदों में होती नहीं है क्योंकि मर्द वहाँ नहीं होते घरों में उस वक़्त, मगरिब और ईशा उसमें कुछ रेशो होता है। यानी आज भी मुसलमानों का एक ऐसा गिरोह है जो सिर्फ जुमे के जुमे मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने को ही दीन समझता है। आज मस्जिदें क्या वीरान नहीं हुई? मस्जिदें तो, वो कहते हैं ना, एक शेर भी है गालिबन अल्लामा इकबाल का कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। आज क्यों ऐसा होता है कि मस्जिदों में जाने के लिए या बुलाने के लिए फिर एंटरटेनमेंट करनी पड़ती है? मारूफ रिवाज है आज के दौर के फैमिली नाइट, जहाँ से मैं आई हूँ मैंने वहाँ ये बहुत कसरत से देखा, महीने का एक कोई एक रात उसको फैमिली नाइट कहते हैं। शहर में पूरे जितनी भी मस्जिदें इकट्ठी हैं उनकी बांटी हुई है, पहला जुमा इनके है, दूसरी उधर है, तीस क्या जी फैमिली नाइट है, उसमें क्या होगा, फ़न होगा, किसी को बुलाएंगे, कुछ स्पीच भी रखते हैं, और मकसद क्या है उसका कि यूथ को बुलाया जाए, बच्चे आएँ और वो करें और फिर बाद में खाना होता है। और जो चीज़ मैंने देखी है ना, अल्लाह ताला मुझे ही माफ़ करे अगर मैं गलत बात कह रही हूँ, कि जिस वक्त स्पीच हो रही होती है ना, वही अंदर चंद बूढ़े मर्द और औरतें सुन रहे हैं, बच्चे सब बाहर खेल रहे हैं, कहीं उधर फुटबॉल के खेल हैं, क्या ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब चाहिए, लेकिन जब मस्जिद और फन प्लेक्स में फ़र्क ना रहे तो आप कहाँ लेके जाएंगे लोगों को? स्लीप ओवर्स तक की कोशिशें मस्जिदों में होती हैं, जब रमज़ान आता है तो क़यामुल्लैल की सूरत में लोग बच्चों को एक एक दिन रात मस्जिदों में जमा करते हैं। यूथ बहुत कुछ कर रही है और ऑफ़ कोर्स जो कर रहे हैं उनकी नीयत बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला उनको फ़ायदा भी देगा इसमें और हिकमत देगा, लेकिन ऐसे ऐसे मंजर सुनने और देखने में आते हैं कि अल्लाह की पनाह कि लड़कियां मस्जिदों में बैठी हुई हैं और ऐसी बातें कर रही हैं कि जिसको कोई इंसान सोच नहीं सकता। मस्जिदों में हो रहा है और बाहर उसके लड़के और लड़कियां जब वो बैठ के आपस में खुशगपियां बना रहे हैं, फ़र्क क्या है? क्या ये नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन असल बात क्या है? कहीं युस्करा फी हस्म हो, उसमें अल्लाह का जिक्र बुलंद हो, उसमें लोगों को बताया जाए कि देखो मस्जिद क्या है। तकवा जब होता है ना तो उस जगह पे बंदे का दिल लगता है, और जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसमें बस बातें इधर उधर की हो जाए तो फिर दुरुस्त नहीं। जब से इल्म से ताल्लुक़ टूटा तब से मस्जिदें वीरान हो गईं। नतीजा क्या हुआ कि वो लोग उसकी खराबियों में लग गए। का उलाई का मा कान लहुम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। ये अब इनके नसीब की बात है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इस मस्जिद में दाखिल ही नहीं हो सकेंगे, और अगर होंगे तो डरते हुए होंगे। मक्का वालों के साथ तो ये मामला हो गया, कब? जब मक्का फतह हुआ, और उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने जब सूरत तौबा में ये आयतें बता दी कि ये मुशरिकीन अब बस 4 महीने की मोहलत है इनको, और इसके बाद अब इस हरम में ये नहीं आ सकते। इन्नल मुशरिकून नजस, ये नजस लोग हैं, अब ये नहीं आएंगे। हज की इजाज़तें ख़त्म, और आज भी देखिए कि एक ख़ास जगह पे जाके फिर रास्ते बदल जाते हैं। अब क़यामत तक उनमें से कोई बंदा मस्जिद हराम की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, ये मुराद है। उस वक़्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज हम इतना फ़ख्र करते हैं, जिस वक़्त उन्होंने अल्लाह के नबी के लिए वो हालात बना दिए कि वहाँ वो रह कर अल्लाह के दीन का काम ना करें, उन्होंने कभी सोचा था कि कभी हम तो यहाँ आ ही नहीं सकेंगे? जब लोग मस्जिदों को अपनी जागीरें समझने लगें, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगें, तो मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। ये कैसे होता है, इसका क्या इस्पेक्ट है, इसको इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे। यहाँ तक तिलावत सुन लेते हैं।
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم